एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी साहित्य की एक बहुत ही खास किताब के बारे में, चार्ल्स डिकेंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस।
हाँ, डिकेंस मतलब विक्टोरियन इंग्लैंड की एक दमदार आवाज। 1812 से 1870 तक का उनका जीवन और उन्होंने समाज को, खासकर गरीबों के जीवन को, अपनी किताबों में उतारा।
बिल्कुल, और कहते हैं उनके अपने जीवन के जो अनुभव थे, जैसे पिता का जेल जाना, उनका खुद फैक्ट्री में काम करना, वो सब उनके लेखन में दिखता है, एक गहरी सहानुभूति।
सही बात है। और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो 1860-61 के आसपास आई, ये तो उनके सबसे मजबूत कामों में से एक मानी जाती है।
हाँ, ये एक तरह की, क्या कहते हैं, बिल्डिंग्स रोमान है, मतलब एक इंसान के बचपन से बड़े होने तक की कहानी, उसका पूरा सफर।
बिल्कुल। पिप जो इसका मेन कैरेक्टर है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो कैसे बदलता है, यही सब। और डिकिन्स के बाद के दौर का काम है ये, तो थोड़ा गहरा और कह सकते हैं स्याह भी है।
तो आज हम इसी पे बात करेंगे, पिप की पूरी कहानी, उसके सपने, उसकी उम्मीदें, कैसे वो टूटती हैं, कैसे वो बदलता है।
और वो सारे बड़े मुद्दे, समाज में क्लास का फर्क, अपराध बोध, माफी, प्यार, ये सब कैसे कहानी में बुना हुआ है।
सही, तो कोशिश यही रहेगी कि सिर्फ कहानी ना बताएं बल्कि उसके मतलब को भी समझें। आज के समय में भी ये क्यों जरूरी है, इस पर भी सोचें। चलिए शुरू करते हैं पिप के बचपन से।
कहानी हमें ले जाती है इंग्लैंड के कैंट इलाके में। दलदली सुनसान सा इलाका है, वहां एक छोटा लड़का है, अनाथ है, फिलिप पिरप, सब उसे पिप बुलाते हैं।
अच्छा,
वो अपनी बड़ी बहन के साथ रहता है जो थोड़ी सख्त मिजाज है, और उसके पति हैं जो गागरी, वो एक लोहार हैं, बड़े ही नेक दिल इंसान। तो क्रिसमस की शाम होती है, पिप अपने माँ बाप की कब्र पर होता है, कब्रिस्तान में, और अचानक एक डरावना सा आदमी सामने आ जाता है। भागा हुआ कैदी है वो, एबिल मैगविच।
बचपन में तो डर ही गया होगा।
हाँ बिल्कुल। वो धमकाता है पिप को कि उसके लिए खाना और एक रेती लेकर आओ जिससे वो अपनी बेड़ियां काट सके। पिप बेचारा घर के मारे कर देता है।
और यहीं से मतलब कहानी की पहली गांठ बन जाती है, ये डर और मदद करने के बाद का वो अपराध बोध।
हाँ, ये गिल्ट या अपराध बोध पिप के साथ रहता है। और ये घटना ये भी दिखाती है कि कैसे अनजाने में लोगों की जिंदगियां जुड़ जाती हैं। इस एक घटना का असर पिप पर बहुत गहरा पड़ता है।
सही कहा। फिर कहानी में आगे क्या होता है?
कुछ टाइम बाद पिप को पास के एक बड़े अजीब से घर में बुलाया जाता है, सैटिस हाउस।
सैटिस हाउस, नाम सुना है, ये मिस हैविशाम का घर है ना?
हाँ वही। अमीर हैं, अकेली रहती हैं और बड़ी अजीब हैं। सालों पहले उनकी शादी होने वाली थी लेकिन दूल्हा मंडप में आया ही नहीं, धोखा मिला। तब से उन्होंने जैसे वक्त को रोक दिया है। आज भी वो अपना पुराना पीला पड़ चुका शादी का जोड़ा पहने रहती हैं। घर की सारी घड़ियां एक ही टाइम पर रुकी हुई हैं। शादी की दावत का खाना मेज पर पड़ा पड़ा सड़ रहा है।
बाप रे, ये तो बहुत भयानक तस्वीर है, ठहरा हुआ दुख।
बिल्कुल। और वही पिप मिलता है मिस हैविशैम की गोदली हुई बेटी से, एस्टेला से। बहुत खूबसूरत लेकिन उतनी ही, मतलब दिल नहीं है उसमें जैसे, बहुत ठंडी।
हाँ, एस्टेला का किरदार भी बहुत अहम है।
और वो पिप का मजाक उड़ाती है, उसके खुरदुरे हाथ, उसके मोटे जूते, कहती तुम तो आम लड़के हो।
और ये बात पिप को लग जाती है।
बहुत ज्यादा। पहली बार उसे अपनी गरीबी पर, अपनी हैसियत पर शर्म आती है, और यहीं से उसके मन में वो इच्छा जगती है जेंटलमैन बनने की, अच्छा दिखने की, ताकि एस्टेला उसे पसंद करे।
यहीं से शुरू होती हैं वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, वो बड़ी उम्मीदें, और यहीं वो सवाल उठता है कि असल में जेंटलमैन होता कौन है, जिसके पास पैसा है या जिसके पास अच्छा दिल है, जैसे जो गारगरी।
बिल्कुल। डिकेंस उस समय के समाज पर चोट कर रहे थे जहां बाहरी दिखावा ही सब कुछ था।
तो पिप अब जो के साथ लोहार का काम सीखने लगता है, पर उसका मन नहीं लगता, उसे तो जेंटलमैन बनना है।
हाँ। और तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। लंदन से एक बड़ा वकील आता है, मिस्टर जैगस।
मिस्टर जैगस, ये भी एक यादगार किरदार है।
वो आकर बताते हैं कि किसी अनजान आदमी ने पिप के लिए बहुत सारी दौलत छोड़ी है, यही है उसकी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। अब उसे लंदन जाना होगा, एक जेंटलमैन बनने की पढ़ाई करनी होगी।
और पिप क्या सोचता है? उसे लगता है मिस हैविशाम ने किया है ये सब।
हाँ, उसे यही लगता है। वो सोचता है मिस हैविशाम उसे एस्टेला के लायक बना रही हैं, और ये गलतफहमी उसे बहुत महंगी पड़ती है बाद में।
वो लंदन चला जाता है जो और बिडी, जो उसकी अच्छी दोस्त हैं, उनका दिल तोड़कर। यहीं से उसका रास्ता थोड़ा भटकने लगता है।
बिल्कुल। ये उम्मीदें उसे ऊपर उठाने के बजाय एक तरह से नीचे गिराने लगती हैं।
लंदन में उसकी जिंदगी कैसी होती है?
बिल्कुल अलग। वो मैथ्यू पॉकेट नाम के एक सज्जन से तालीम लेता है। उनके बेटे हर्बर्ट पॉकेट से उसकी गहरी दोस्ती हो जाती है। हर्बर्ट उसका सबसे अच्छा दोस्त बनता है पूरी कहानी में।
हर्बर्ट एक अच्छा किरदार है।
पिप जेंटलमैन वाले तौर तरीके सीखता है, महंगे कपड़े, शौक पालना, और जल्द ही वो कर्ज में डूब जाता है।
अच्छा।
और सबसे दुख की बात यह है कि वो अपने पुराने लोगों से, अपनी जड़ों से शर्म महसूस करने लगता है, खासकर जो और बिडी से दूरी बना लेता है। जब जो उससे मिलने लंदन आता है तो पिप को शर्म आती है उसके सीधेपन से।
ये पढ़ते हुए भी बुरा लगता है। वो कैसे बदल जाता है, स्नॉब बन जाता है।
हाँ, वो स्नॉबरी आ जाती है उसमें। डिकेंस दिखाते हैं कि पैसा और रुतबे का लालच कैसे इंसान की असलियत भुला देता है। वफादारी, सच्चा प्यार, सब पीछे छूट जाता है।
पर क्या ये सिर्फ पिप की गलती है या उस समाज की भी जो ऐसी चीजों को इतनी अहमियत देता है?
ये सवाल डिकेंस उठाते हैं। बिल्कुल। इसी बीच वो एस्टेला के पीछे पड़ा रहता है। एस्टेला अब लंदन के हाई सोसाइटी का हिस्सा है।
और एस्टेला का रवैया कैसा रहता है?
वो साफ कहती है पिप से, मेरे पास दिल नहीं है, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। वो तो बस दूसरे लड़कों को जलाने के लिए पिप का इस्तेमाल करती है।
और पिप को ये समझ नहीं आता?
नहीं, वो अपने मोह में अंधा है। और आखिरकार एस्टेला एक बहुत अमीर लेकिन निहायत ही बदतमीज और क्रूर आदमी बेंटले ड्रमल से शादी कर लेती है।
ओ, पिप का दिल टूट गया होगा
बुरी तरह। लेकिन एस्टेला का किरदार भी एक तरह से दुखद है। वो तो मिस हैवेशम के बदले की आग का एक मोहरा बनकर बड़ी हुई है। उसे प्यार करना सिखाया ही नहीं गया।
सही कहा, वो भी एक शिकारी है। फिर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ कब आता है?
जब पिप 23 साल का होता है। एक रात लंदन में उसके कमरे में, अंधेरी तूफानी रात है, एक बूढ़ा अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है, थका हुआ मैला सा।
कौन होता है वो?
पिप चौंक जाता है। वो आदमी अपनी पहचान बताता है। वो एबल मैगविच है, वही कैदी जिसे पिप ने बचपन में दलदल में मदद की थी।
क्या, इतने सालों बाद?
हाँ, और फिर वो राज खुलता है जो पिप की दुनिया हिला देता है।
कि उसकी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस
मिस हैविशाम से नहीं बल्कि इस कैदी मैगविच की तरफ से थीं। मैगविच को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था सजा के तौर पर। वहां उसने भेड़ पालकर बहुत मेहनत की, पैसा कमाया
सिर्फ पिप के लिए।
हाँ, ताकि वो उस छोटे लड़के को जिसने उस पर दया दिखाई थी एक जेंटलमैन बना सके।
ये गजब की कृतज्ञता है।
ये तो
पिप के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। जिस पैसे पर वो इतरा रहा था वो एक कैदी की कमाई है।
बिल्कुल, उसका जेंटलमैन बनने का पूरा सपना, पूरी पहचान, सब बिखर जाता है। शुरू में तो उसे मैगविच से घिन आती है, नफरत होती है।
स्वाभाविक है।
लेकिन धीरे धीरे वो घिन कम होती है। उसकी जगह पहले कर्तव्य का भाव आता है और फिर एक अजीब सा लगाव, एक स्नेह पैदा होने लगता है मैगविच के लिए। वो जानता है कि मैगविच अगर इंग्लैंड में पकड़ा गया तो उसे फांसी हो जाएगी।
यहीं पिप का असली इम्तिहान शुरू होता है। समाज ने जिसे ठुकराया उसी के पैसे से पिप समाज में ऊपर चढ़ा। अब वो क्या करेगा?
सही, वो एक नैतिक कश्मकश में फंस जाता है। उसका अतीत जिसे वो भुलाना चाहता था वो लौटकर उसके सामने खड़ा है।
फिर वो क्या फैसला लेता है?
वो मैगविच की मदद करने का फैसला करता है। अपने दोस्त हर्बर्ट के साथ मिलकर वो मैगविच को चुपके से देश से बाहर निकालने का प्लान बनाता है। ये बहुत खतरनाक काम है।
और इसी बीच और भी राज खुलते हैं ना?
हाँ, कई सारे। पता चलता है कि दलदल में जो दूसरा कैदी था, कॉम्पेसन, वही आदमी था जिसने मिस हैविशाम को शादी में धोखा दिया था, और वो मैगविच का पुराना दुश्मन भी है।
अच्छा, ये सब जुड़ा हुआ है आपस में।
और सबसे बड़ा राज खुलता है एस्टेला के बारे में।
हाँ, उसका क्या?
पता चलता है कि एस्टेला असल में मैगविच और मिस्टर जैगर्स की हाउसकीपर मॉली की बेटी है। जज जैगर्स ने ही कभी मॉली को कत्ल के केस से बचाया था।
बाप रे, तो एस्टेला मैगविच की बेटी है?
हाँ, ये जानकर तो पिप और भी हिल जाता है।
डिकिन्स ने क्या कमाल का प्लॉट बुना है। सारे धागे कैसे आकर मिलते हैं, किस्मत, संयोग और पुराने कर्मों का फल।
बिल्कुल। कहानी का क्लाइमैक्स आता है टेम्स नदी पर। पिप और हर्बर्ट नाव में मैगविच को लेकर एक समुद्री जहाज की तरफ जा रहे होते हैं ताकि वो भाग सकें।
लेकिन कॉम्पसन?
हाँ, कॉम्पसन उनका पीछा कर रहा होता है। वो पुलिस को खबर कर देता है। भागने की कोशिश नाकाम हो जाती है, नदी में लड़ाई होती है, कॉम्पसन डूबकर मर जाता है।
और मैगविच?
मैगविच बुरी तरह घायल हो जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है।
तो प्लान फेल हो गया।
हाँ, और क्योंकि मैगविच एक सजायाफ्ता मुजरिम है, उसकी सारी दौलत सरकार जब्त कर लेती है। पिप की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का पूरी तरह अंत हो जाता है।
यानी वो फिर से वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था, बिना पैसे के।
हाँ, लेकिन अब वो पहले वाला पिप नहीं है। इस हार में उसकी नैतिक जीत है। पैसा चला गया, रुतबा चला गया, लेकिन अब वो मैगविच के साथ है। वो जेल में रोज उससे मिलने जाता है, उसकी देखभाल करता है पूरी वफादारी से।
मानवीय रिश्ता अब उसके लिए ज्यादा मायने रखता है।
बिल्कुल।
और मरने से ठीक पहले पिप मैगविच को बताता है कि उसकी बेटी एस्टेला जिंदा है, बहुत खूबसूरत है और एक लेडी बन गई है।
ये सुनकर मैगविच को शांति मिली होगी।
हाँ, उसे शांति मिलती है और वो दम तोड़ देता है। पिप के लिए ये एक तरह से मुक्ति का क्षण है। उसने दौलत खोई पर शायद इंसानियत वापस पाली।
मैगविच की मौत के बाद पिप का क्या होता है?
वो बहुत बीमार पड़ जाता है, कर्ज में डूबा हुआ है, कोई नहीं है उसका। तब जो गारगोरी लंदन आता है,
जो
वो नेक दिल लोहार, वो आकर पिप की देखभाल करता है बिना कोई शिकायत किए, बिना पुराना कुछ याद दिलाए, एकदम निस्वार्थ भाव से।
ये देखकर तो पिप को बहुत पछतावा हुआ होगा।
बहुत। उसे अपनी बेरुखी, अपने घमंड पर शर्म आती है, वो विनम्र बन जाता है, उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है।
फिर वो क्या करता है?
ठीक होकर वो अपने गांव वापस जाता है, सोचता है कि बिडी से माफी मांगेगा, शायद उससे शादी के लिए पूछेगा।
लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि जो और बिडी ने आपस में शादी कर ली है और वो खुश हैं।
ओ, तो पिप ने वो मौका भी गवा दिया।
हाँ, उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया है। खैर, आखिर में वो हर्बर्ट के साथ काम करने के लिए मिस्र काहिरा चला जाता है। वहां क्लर्क की नौकरी करता है, मेहनत से अपना कर्ज चुकाता है और धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान वापस पाता है।
ये जरूरी था शायद उसके लिए, जमीन से जुड़ना, मेहनत करना, सच्ची तरक्की शायद यही है।
बिल्कुल, विरासत की दौलत ने तो उसे बिगाड़ दिया था।
कहानी का अंत कैसे होता है? क्या पिप कभी लौटता है?
हाँ, 11 साल बाद वो इंग्लैंड लौटता है। एक शाम वो सेटिस हाउस के खंडरों में जाता है जो अब वीरान पड़ा है।
और वहाँ?
वहाँ उसकी मुलाकात एस्टेला से होती है। एस्टेला अब विधवा है, उसका पति बेंटले ड्रमल मर चुका है और एस्टेला वो बदली हुई लगती है, ज्यादा शांत, ज्यादा नरम। शायद जिंदगी के दुखों ने उसे कुछ सिखाया है।
तो क्या वो दोनों फिर एक हो जाते हैं?
अच्छा, अंत थोड़ा खुला हुआ है। डिकिन्स ने दो अंत लिखे थे असल में। जो छपा उसमें पिप कहता है कि वो और एस्टेला हाथ में हाथ डाले खंडरों से निकले और उसे उससे बिछुड़ने की कोई छाया नहीं दिखती।
इसका क्या मतलब निकालें? कि वो साथ रहेंगे?
पक्का नहीं कह सकते। शायद, हाँ शायद ये बस एक उम्मीद है, या शायद ये कि अतीत के घाव भर सकते हैं पर निशान रह जाते हैं। डिकिन्स ने इसे पढ़ने वाले पर छोड़ा है।
ये दिलचस्प है। अगर हम किरदारों के सफर को देखें तो पिप का सफर सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला रहा।
हाँ, मासूमियत से शुरू होकर फिर महत्वाकांक्षा, घमंड, फिर मोहभंग, पछतावा और आखिर में एक तरह की समझदारी, परिपक्वता, खुद को खोजने का एक दर्द भरा सफर।
और दूसरी तरफ जो गारगरी है वो बिल्कुल स्थिर, सादगी, नेकी, वफादारी का प्रतीक। वो दिखाते हैं कि असली जेंटलमैन दिल से होता है, पैसे से नहीं।
बिल्कुल, वो कहानी का नैतिक कंपास है। मिस हेविशा में एक दुखद किरदार है, बदले की आग में जलती हुई, अतीत में कैद, उनका आखिर में पिघलना मार्मिक है।
और एस्टेला?
एस्टेला भी एक शिकार है। मिस हेविशाम ने उसे ऐसा ही बनाया, बिना भावनाओं के। उसका बदलाव भी दर्द से होकर गुजरता है।
और मैगविच? उसका सफर तो कमाल का है, एक खूंखार कैदी से एक पिता जैसे संरक्षक तक। पाठक की सोच बदल जाती है उसके बारे में।
हाँ, वो दिखाता है कि जिसे समाज बुरा समझता है उसमें भी कितनी अच्छाई और वफादारी हो सकती है। क्लास सिस्टम पर ये एक बड़ा सवाल है।
तो उपन्यास के मुख्य विषय क्या उभर कर आते हैं? एक तो ये सामाजिक वर्ग और महत्वाकांक्षा।
हाँ, ऊपर उठने की चाहत और उसकी कीमत, सच्ची नेकी बनाम दिखावा।
दूसरा ये अपराध बोध, जुर्म और सजा, और फिर माफी या मुक्ति।
बिल्कुल, पिप का अपराध बोध, न्याय क्या है, असली अपराधी कौन है। पिप की मुक्ति पैसे से नहीं बल्कि मैगविच के प्रति वफादारी निभाने से होती है।
पहचान का भ्रम भी एक बड़ा थीम है। पिप खुद को कुछ और समझता रहता है।
हाँ, और कैसे वो भ्रम टूटते हैं और फिर असली पहचान मिलती है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो।
और आखिर में प्यार और वफादारी, एस्टेला के लिए पिप का जुनून और जोबी का सच्चा निस्वार्थ प्यार।
हाँ, डिकिन्स साफ दिखाते हैं कि असली कीमत किस चीज की है, वफादारी और सच्चे मानवीय रिश्तों की।
कहानी कहने का अंदाज भी खास है, फर्स्ट पर्सन में, यानी पिप खुद कहानी सुना रहा है पर बड़े होने के बाद।
हाँ, इससे वो ड्रामेटिक आयरनी पैदा होती है। हम पढ़ने वाले जानते हैं कि पिप क्या गलती कर रहा है, पर उस वक्त के पिप को वो नहीं पता। हम उसकी नासमझी देख पाते हैं।
डिकेंस ने सिंबल्स मतलब प्रतीकों का भी बहुत इस्तेमाल किया है, जैसे वो दलदल का धुंधलापन,
हाँ, जो अनिश्चितता और खतरे को दिखाता है। सैटिस हाउस, जो रुके हुए वक्त और सड़न का प्रतीक है। मैगविच की बेड़ियां, जो जुर्म और बंधनों का प्रतीक है। ये सब कहानी को और गहरा बनाते हैं।
कुछ डायलॉग्स तो याद रह जाते हैं, जैसे एस्टेला का कहना कि मेरे पास दिल नहीं है,
हाँ, या जो का वो कहना कि झूठ झूठ होता है। कितनी सीधी और सच्ची बात है।
तो कुल मिला के ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हमें क्या सिखाती है? यही कि असली महानता पैसे या रुतबे में नहीं है।
मेरे ख्याल से हम असली महानता ईमानदारी में है, करुणा में है, रिश्तों को निभाने में है, गिरकर उठने में है।
और ये कहानी आज भी हमें खींचती है, क्योंकि ये मुद्दे महत्वाकांक्षा, क्लास, पहचान की तलाश, प्यार की उलझने, ये तो हमेशा से इंसानी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं।
बिल्कुल, डिकेंस ने इन्हें इतनी सच्चाई और एहसास के साथ लिखा है कि आज भी हम पिप के सफर से खुद को जोड़ पाते हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।